तुलसी के राम सीता का परित्याग नहीं करते, वे सीता के आचरण पर संदेह नहीं करते। रामचरितमानस में सीता का अंतिम वर्णन यह है कि वे सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे शोभा की खान, सुशील और विनीत हैं। यद्यपि घर में विपुल सेवक सेविकिनी हैं, किंतु वे घर का कामकाज अपने हाथों से ही करती हैं। कौसल्यादि सासुओं की सेवा मान और मद रहित होकर करती हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। यद्यपि गृहम सेवक सेवकिनी, विपुल सकल सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई त सब ही मान मद नाही। सीता के दो पुत्र हुए लव और कुश, जिनका वर्णन वेद पुराणों ने किया है। दोनों विजयी, विनयी, गुणों के धाम, अति सुंदर और मानो राम के प्रतिबिंब थे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। द्वौ विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। यह सब लिखते समय तुलसी के मन में वाल्मीकि और भावभूति द्वारा चित्रित राम द्वारा सीता का परित्याग और सीता संबंधी प्रवाद कहीं न कहीं जरूर खटकता रहा होगा। सो उसका भी निराकरण कर दिया। सीता तो उमा, रमा, ब्रह्मानी से वंदिता है। वे जगत की माता और सदा अनिंदिता है। उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता, जगदम्बा संतत मनिदिंता। अनिंदिता लिखकर तुलसी ने अपने मन की खटक निकाली है। किसी की भी निंदा करने से क्या हुआ? सीता उमा, राम, ब्रह्मानी जैसे जैसों से वंदिता है। रामचरितमानस की कथा में सीता की यह अंतिम झांकी है। तुलसी के राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते थे। तुलसी के राम यानी अपने आदर्शों पर राम का स्वरूप खड़ा करने वाली तुलसी की राम विषयक भावना। तुलसी ने शंबुक वध की भांति यह अंश भी राम कथा से निकाल दिया है। क्यों? यह तुलसी की नारी निंदक रूप प्रकट करता है या कोई और रूप? तुलसी ने राम को लोक जीवन में घुले मिले हुए और लोकवादी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। राम मनुज वपुधारी ईश्वर है। तुलसी ने राम का चित्रण किया है मनुष्य के रूप में और बीच बीच में पाठक श्रोता को सूचित करते गए हैं कि इन्हें कहीं सचमुच मनुष्य न समझ लेना। मनुष्य के रूप में राम जिस प्रकार चित्रित किए गए हैं वह लोकप्रिय और जनसामान्य को बेहद प्रेम करने वाले व्यक्ति का रूप है। भक्त कवियों की कविता की उत्कृष्टता का आधार स्वाभाविक चित्रण है। चित्रण की स्वाभाविकता वहीं वहां होगी जहां चित्रण सामान्य लोकानुभव के अनुकूल हो। तुलसी के राम बाह्य जगत में जो कुछ करते दिखाए गए हैं वह सामान्य लोकानुभव के अनुकूल है और लोक के लिए मंगलकारी है। बालक राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। तुलसी के समकालीन सामंतों और मुगल सम्राटों की संतानें साधारण प्रजा की संतानों के साथ नहीं खेलती थी, लेकिन बालक राम का वर्णन है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। दूसर दूर भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित इत, उन अवसर उपाय। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। राम अयोध्या के सभी वासियों, नर नारी, वृद्ध बालक जनों को प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। नगर के लोग जिस प्रकार सुखी हों, राम वैसा ही कार्य करते हैं। कौसलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। जय विधि सुखी हो ही पुरलोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। बालकों और बाल सखाओं के प्रति राम के मन में विशेष प्रीति है। जनकपुर में राम के पहुंचने पर वहां के बाल गोपाल सहज भाव से राम के साथ हो लेते हैं। जनकपुर में उनके साथ साथ घूमकर मटर गश्ती करते हैं। यह भी देखने योग्य है कि राजा जनक और उनके भाइयों या सामंतों सृष्टियों के भी पुत्र रहे होंगे, किंतु राम के साथ वे नहीं हैं। राम के साथ वे बालक हैं जो बेकार सड़कों पर घूमते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रीट आर्चिंस कहा जाता है। मजाल है कि कस्बे में मोहल्ले में कोई वारदात हो जाए और ये मौके पर हाजिर ना हो। ये उस जमाने के वे बालक हैं जो नन्हे राजा बेटा बनकर आज भी स्कूल नहीं जा पाते और गुल्ले डंडा खेलने, चमकीली पन्नी लूटने आदि में व्यस्त रहते हैं। तुलसीदास का बाल लीला वर्णन यद्यपि सूरदास से बहुत घटकर है, लेकिन बालकों के प्रति उनका अनुराग और बाल जीवन का पर्यवेक्षण काफी गहरा है। शंकर की बारात को देखकर लड़के डरे भी थे और घर जाकर खबर भी उन्होंने चटपट सुनाई थी, घर घर बात असलरी कन कहीं। छोटे छोटे बच्चों को खबरें सुनाने का काफी चाव होता है, वे खबरों को अपनी कल्पना से काफी रंजित भी करते हैं। बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा, पुर बालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कही अति हर्ष ही देखि देखि दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाही दो भाई। बालक अपनी अपनी रुचि से बुलाते हैं और दोनों भाई उनके पास स्नेह पूर्वक जाते हैं। ये बालक राम लक्ष्मण का साथ नहीं छोड़ना चाहते। आखिरकार राम ने मीठी मीठी बातें करके उन्हें जबरदस्ती विदा किया। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। लेकिन बालक ही सही, ये नगर के हैं। ग्रामवासियों के संपर्क में राम वनवास के लिए अयोध्या से निष्कासित होने के बाद आते हैं। ग्राम के नर नारी राम का जिस प्रकार स्वागत करते हैं, उनसे जैसा अकृत्रिम अनुराग प्रकट करते हैं, वह तुलसी के हृदय को भी प्रकट करता है। इस सबसे यह भी व्यंजित होता है कि सरल निष्कपट ग्रामीण नर नारियों, निषाद शबरी और कोल किरातों के प्रति तुलसी की क्या भावना थी। ग्राम वधुओं का चित्रण करते समय तुलसी अवगुण आठ सदा उर रही वाली बात भूल जाते हैं। हिंदी के परम विश्वसनीय आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल को राम वनगमन का प्रसंग बहुत मार्मिक लगता था। इतना मार्मिक लगता था कि वे बार बार इस प्रसंग पर लिखा करते थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तुलसीदास में उन्होंने लिखा है, पथिक वेश में राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, यह दृश्य हमें बहुत मनोहर लगता है, इसी से बार बार सामने आया करता है। शुक्ल जी को राम का यह रूप क्यों मनोहर लगता है, उन्हीं के शब्दों में देखिए। एक सुंदर राजकुमार के छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलने और वन वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है। राम चाहे जितने सुंदर एवं सुशील होते, यदि घर से निकलकर सामान्य जीवन भूमि पर विचरण न करते तो इतने मनोहर न लगते। राजपाट छोड़कर वन मार्ग के पथिक राम लोक रक्षार्थ संघर्ष भूमि पर उतरते हैं। पथिक एवं वनवासी राम राज परिवार और राजसी ठाट बाट छोड़कर भारत के ग्रामीणों और वन्य जातियों के आत्मीय और प्रिय बन जाते हैं। तुलसी के राम का यह सामान्य और लोकप्रिय रूप सबसे अधिक आकर्षक है। वाल्मीकि और भवभूति के राम सभी परिस्थितियों में कुछ न कुछ विशिष्ट बने रहते हैं। तुलसी के राम सुचित राम नहीं, चित्रित राम, सामान्य जनों से बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। यही नहीं, राजा राम भी प्रतापी असाधारण नहीं, संकोची शीलवान और पर दुख कातर सामान्य जन के रूप में चित्रित किए गए हैं। वन मार्ग के पथिक राम से केवट भी प्रेम लपेटे अटपटे बैन बोले लेता है। राम की पत्नी सीता से ग्राम वधु सहज भाव से वार्तालाप कर लेती हैं और वन मार्ग के पथिक राम वी राम है जिनका खाना पीना सोना उठना बैठना साधारण ग्रामीणों वन्य जनों जैसा हो जाता है। राम नंगे पैर चलते हैं तो तपती धूल से उनके पैर जलते हैं। सीता के पैरों में कांटे गड़ते हैं। उन्हें प्यास लगती है तो लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं। राम का यह अति साधारण और सहज रूप उन्हें लोकप्रिय बनाता है। ऐसे अवसरों पर तुलसी की सहज भाषा पूरे दृश्य को अत्यंत करुण, आत्मीय एवं मार्मिक बना देती है। एक प्रसिद्ध सवेय की इस पंक्ति में लरिका शब्द का प्रयोग राम लक्ष्मण सीता को कितना ग्रामीण या हमारे अपने जैसा बना देता है। जल को गए लखनु है लरिका, परिखौ पिए छाह घरिक हुए ठाढ़े। कौन नहीं जानता कि तुलसी राम को ब्रह्म मानते हैं, सीता को लक्ष्मी आदि से भी बढ़कर, और लक्ष्मण को शेष सहस्त्रस्त शीश जग कारण जो अवतरयउ भूमि भय तारण। किंतु तुलसी के काव्योत्कर्ष का आधार वे राम है जो अपनी पत्नी को थकी हुई जानकर बड़ी देर तक पैर से कांटे निकालते हैं। वो सीता है जिनके माथे पर 4 कदम चलते ही पसीने की बूंद चमकने लगती है, जो यह भी नहीं जानती कि पर्ण कुटी बहुत दूर चलकर बनानी है। और वे लक्ष्मण है जो लरिका है। तुलसी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि ब्रह्म, लक्ष्मी और शेष नाग ने नहीं बनाया है। 16वीं 17वीं शती के उस सामान्य भारतीय जीवन ने बनाया है जिसका गहरा पर्यवेक्षण तुलसी ने किया था। पुरत निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनि जल की, पोट सुखी गए मधुरा धरवे। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करि हो कित हुए। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल ज्वय। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिए छाह धरिक हुए ठाढ़े। पोछी पसे वो बयार करो, अरुपाय पखारियों भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबर प्रिया श्रम जानी, कै बैठ बिलंब लौ कंटक काढ़े। जान कि नाहक नेहु लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। वन मार्ग में राम सामान्य जनों में कितना घुल मिल जाते हैं, वे ग्रामीणों के लिए के कितने आत्मीय हो जाते हैं। तुलसी को राम का यह सहज रूप अत्यधिक प्रिय रहा होगा, तभी उन्होंने इसका वर्णन इतना जमकर और इतना रस लेकर किया है। सीता और लक्ष्मण के साथ राम जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तो उनका आगमन सुनकर सभी बालक, वृद्ध, नर और नारी घर का कामकाज भूलकर उनके पास चल देते हैं। उनका रूप देखकर वे अपने लोचनों का फल प्राप्त करते हैं। दोनों भाइयों को देखकर वे प्रेम मग्न हो जाते हैं। उनके लोचन सजल और शरीर पुलकित हो उठते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो रंगों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। एक एक को सलाह देते हैं कि इसी क्षण अपने लोचनों को सार्थक कर लो। राम को देखकर कोई कोई ऐसे अनुरक्त हो गए हैं कि उन्हें देखते देखते साथ साथ दूर तक चले जाते हैं। कोई कोई मन में उन्हें बसा कर ही स्नेह शिथिल हो गए हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। सजल बिलोचन पुलक सरीरा, सब भय मगन देखी दौबीरा। वरनी न जाई दसा तिन केरी, लही जनु रंकनी सुर मन ढेरी। एकन एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेही छन एही। भारतीय ग्रामीण अपने स्वभाव और प्रेम के कारण राम को देखकर केवल पुलकित ही नहीं होते, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वे राम के मार्ग श्रम को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तुलसी ने ग्राम जनों के सत्कार और व्यवहार का जैसा वर्णन किया है वह आज भी गांव में देखा जा सकता है। ऐसे स्वाभाविक और सजीव वर्णनों के कारण ही तुलसी ने दीर्घ काल तक अपनी कविता को ग्राम जनों के लिए प्रीतिकर और संदर्भवान बना रखा है। कोई ग्राम जन बरगद की अच्छी छांह देखकर उसके नीचे नरम घास पात बिछा देता है और कहता है, थोड़ी देर बैठकर थकान दूर कर लीजिए, फिर चाहे जब चले जाइएगा, चाहे अभी चाहे सवेरे। कोई जल भरकर कलश दे आते हैं, मीठे स्वर में कहते हैं, नाथ हाथ पैर धो लीजिए। राम ने वहां घड़ी भर विश्राम किया। उनके बीच तरुण तमाल वृक्ष के समान रंग वाले राम शोभित हुए। एक देखी बट छांह भली, डास मृदुल मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनकु श्रम, गव नब अबही की प्रात, एक कलस भर आ नहीं पानी, अचैया राथ कहीं मृद बानी, जान श्री मित सियमन माही, घरिक विलंबु किन बट छाही। चित्रकूटवासी राम वन्य जनों को बहुत प्रिय हैं। वन में रहने वाले मुनि भी राम का स्वागत करते हैं, किंतु जो स्नेह कोल किरातों के हृदय में है वहां वह वहां कहां। चित्रकूट के कोल किरातों में जब राम का आगमन सुना तो ऐसे प्रसन्न हुए मानो घर में नौ निधियां आ गई हों। मुनि तो धर्म उपदेश आदि की बातें करते थे, कोल की रातों की को शायद राम के भोजनादिक की चिंता भी थी। सो वे दोने में कंद मूल फल भरकर राम के पास पहुंचे। जिन लोगों ने राम के दर्शन पहले ही कर लिए थे उनसे वे राम के बारे में पूछते जाते हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना, तिन्ह महा जिन देख दो भ्राता, अपर तिन्ह ही पूछ ही मग जाता। ये कोल किरात राम का बहुत ख्याल रखते हैं। वे राम से कहते हैं, अपने रहने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है, क्षमा कीजिएगा, आपने रहने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है, यहां आप सभी ऋतुओं में सुखी रहिएगा, हम आपकी सभी प्रकार से सेवा करेंगे, हाथी शेर सांप बाघों को आपसे दूर रखेंगे, यहाँ के बिहड़ वन पहाड़ कंदराओं खोहों का चप्पा चप्पा हमने छान रखा है, हम आपको शिकार खिलाएंगे, आप आज्ञा देने में कोई संकोच न कीजिएगा। किन्ह बासु बल ठाव बिचारी, इहां सकल ऋतु रब रहब सुखारी, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हर अहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा, तह तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। राम निषाद गिद्ध शबरी और बंदर भालुओं के भी अत्यंत प्रिय हैं। ये लोग भी राम को प्रिय हैं। ये राम के प्रिय ही नहीं, विपत्ति में राम की सहायता करने वाले भी हैं। राम का विरोधी संपन्न साधन युक्त और सुसज्जित है, वह चाहे रावण हो या जयंत। जयंत तो इंद्रपुत्र है, लेकिन राम के साथी सहायक सभी वे हैं जिन्हें निम्न समझा जाता है और जो साधनहीन है। रावण रथी बिरत रघुराया, बिरथ रघुराया। निषाद राम से जिस अनौपचारिक एवं आत्मीय शैली में बात करता है वह जाति पाति ऊंच नीच सभी बंधनों को तोड़ देती है। ग्रामवासी संकल्प करके भी राम के समझाने बुझाने पर रुक जाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता, वह राम के साथ चल देता है। यह निषाद भरत के आदर का पात्र बनता है। यहां तुलसी की वर्णाश्रम व्यवस्था भक्ति के कारण टूट जाती है। भरत ने चित्रकूट के रास्ते में जब यह सुना कि निषाद राम का मित्र है, तुलसी ने निषाद को राम सखा कहा है, तो उससे मिलने के लिए रथ से उतरकर पैदल चले। इधर केवट ने अपनी जाति और गांव आदि का नाम लेते हुए जमीन पर सिर टिकाकर जोहार किया, उधर भरत ने उसे हृदय से लगा लिया और ऐसे भेंटा मानो वे लक्ष्मण को भेंट रहे हो। राम सखा सुनी सयदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गांव जाति गुहा नाउ सुनाई, किनह जोहारु माथ महिलाई, करत दंडवत देखते ही भरत लिन्न उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई, हृदयम समाई। राम सखा विशेषण का प्रयोग निषाद के लिए हुआ है। जिस निषाद को भरत लक्ष्मण के समान भेंटते हैं वह तुलसी की दृष्टि में पूज्य है या ताड़न का अधिकारी। निषाद शूद्र ही था ना। शबरी भी शबर किसी वन्य जाति की स्त्री है। वह तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्न महा मैं मति मंद अधारी है, लेकिन राम उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, उसके यहां कंदमूल फलादि का भोजन करते हैं। वह अपने को अधम नारी कहती है, लेकिन राम उसे भामिनी करिबर गामिनी कहकर संबोधित करते हैं। नवधा भक्ति का उपदेश देकर मानो अधम ते अधम, अधम अति नारी का प्रतिवाद करते हुए राम शबरी से कहते हैं, नव महु एक जिन्ही के होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम की सर्वाधिक सहायता बंदर भालू करते हैं, इनमें श्रेष्ठ हनुमान है। हनुमान राम के अत्यधिक प्रिय हैं, वे राम के सबसे बड़े साधक हैं। उन्हें राम काज किए बिना विश्राम नहीं। उन्हें सीता अपना पुत्र कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, राम भी उन्हें पुत्र कहते हैं। राम उनके उपकारों के भार से अपने को इतना दबा महसूस करते हैं कि उनका मन भी कभी हनुमान के सामने होने का साहस नहीं करता। वे कभी हनुमान के उऋण नहीं हो सकते। सुनु कपि तो ही समान उपकारी नाही, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होइ न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखौ करी विचार मन माही। अयोध्या लौटने पर राम बंदर भालुओं को परिचय देते हुए वशिष्ठ से कहते हैं, ये सब मेरे सखा हैं। संग्राम को पार करने के लिए इन्होंने बेड़े का काम किया, इन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी, ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कह बेरे, मम हित लागे जन्म इन्हारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। बंदर भालुओं को भारत से भी अधिक प्रिय कहने वाले राम ब्रह्म नहीं, मनुष्य हैं, जो कृतज्ञ हैं, जो ये महसूस करते हैं कि बंदर भालुओं की सहायता के बिना रावण को परास्त नहीं किया जा सकता था। सर्वशक्तिमान ब्रह्म को किसी से उपकृत होने की कोई जरूरत नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह कि तुलसी के राम उन लोगों के प्रिय हैं जो साधनहीन हैं, जिन्हें बड़े बड़े लोग छोटा या नीच समझते हैं, जिनकी वे उपेक्षा करते हैं। अहल्या, ग्रामीण नरनारियां, केवट, कोल की रात, शबरी, गिद्ध, बंदर भालुओं से राम की आत्मीयता पर गौर करने पर से राम का दीन बंधु एवं पर दुख कातर रूप सामने आता है। अहल्या अपने पति द्वारा परित्यक्ता थी, पति बहुत बड़े मुनि थे, लेकिन अपनी पत्नी की गलती को माफ नहीं कर पाए थे, राम ने उसे पवित्र किया। साधनहीन बंदर भालुओं का महत्व राम ने समझा, उन्हें राम ने अपना सखा और सहायक बनाया। आज की उपेक्षित सामान्य जनता की भांति ये बंदर भालू भी अपनी क्रांतिकारी भूमिका और अपनी अपने में छिपी शक्ति को भूले बैठे थे। कहा जाता है कि हनुमान को किसी ने शाप दिया था कि वे अपनी ताकत भूले रहेंगे जब तक उन्हें कोई उत्साहित न करे, लेकिन जांबवन से प्रोत्साहित करते ही सुनत ही भयउ पर्वताकार कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपर गिरी नह कर काजा सिहनाद करि बारहि बारा लिलहि नाबहि जल निधिखारा। बिल्कुल प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के नायक होरी की तरह, जो सबसे चुपचाप पिटता रहता है लेकिन कर्तव्य बोध होने पर पठान वेशधारी मेहता को उठा कर दे मारता है। ये साधनहीन उपेक्षित बंदर भालू इंद्र को भी जीत लेने वाले परम शक्तिशाली रावण का विनाश करने में सहायक होते हैं। रावण की शक्ति अपार है, उसने अपनी भुजाओं में कैलाश पर्वत को उठा लिया था। वह चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, चलत दसानन डोलत अवनी, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि सब उसके वशीभूत थे। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि वहां तक उसका अधिकार, ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनु धारी दस मुख बसवरती नर नारी आय सुकरहि सकल भय भीता नवहीं आय नित चरण बिबिनीता। भुज बल विश्व बस्य करि राखसि कोव न सुतंत्र मंडलीक मनि रावण राज करै निज मंत्र। रावण जितना शक्तिशाली है उतना ही अन्यायी, उतना ही अहंकारी, विवेकहीन और परद्वेषी, दूसरों का अहित चाहने वाला। रावण के मारे जाने पर देवता उसके विषय में कहते हैं, विश्वद्रोह हरत यह खल कामी निज अध गय कुमार गामी यह खल मलिन सदा सुर द्रोही काम लोभ मद रति रत अति कोही। रावण राम का विरोधी है, वह तुलसी के सारे मूल्यों के विरोध का प्रतीक है। वह दुराचारी है, परद्वेषी और परपीड़क है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली एवं साधन संपन्न भी है। उसकी तरफ कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे वीर हैं, भयंकर और असंख्य सेना है। संपत्ति की यह हालत है कि उसकी नगरी स्वर्ण की है, वह अत्यंत सुरक्षित। राक्षस वीरों की तुलना में बंदर भालुओं की कोई हैसियत नहीं, बंदर भालू तो राक्षसों के आहार हैं। रावण उस अन्याय का प्रतीक है जो इतना शक्तिशाली होता है कि युग के सारे विकास, समस्त सद्गुण एवं सारी संभावनाओं को दबोचे बैठा रहता है। और जिसका विनाश इतिहास में साधनहीन किंतु आगे बढ़ने वाली मानवता की शक्तियां करती हैं। राम इन्हीं मानवीय शक्तियों की प्रतीक है। इस दृष्टि से देखें तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन समझ में आता है कि राम कल्प पुरुष हैं, अर्थात चूंकि वे इतिहास के प्रत्येक दौर में जन्मते रहे और जन्मते रहेंगे, इसलिए वे अचिंत्य हैं, अनादि और अनंत हैं। उनकी शक्ति का आर पार नहीं है, उन्हें कोई सामान्य मनुष्य समझे तो वह सचमुच बाबा की डांट फटकार का अधिकारी है। राम मनुज रे कस सठ बंगा, राम साधारण मनुज नहीं सनातन पुरुष है। तुलसी के राम केवल कल्प पुरुष नहीं है, वे श्रेष्ठ पुरुष भी हैं, वे लीलाकारी हैं। विपत्ति पड़ने पर वे रोते भी हैं, उन्हें क्रोध भी आता है, वे मुस्काते हैं, विरह में विलाप करते हैं, शत्रु के घर में रहकर आई हुई पत्नी के प्रति कछुक दुर्बाद भी कहते हैं, भाई के घायल और मूर्छित होने पर ऐसी करुण उक्तियां भी कहते हैं। मम हित लाग तजे हूं प्रीति माता, सहे हूं बिपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहां अब भाई, उठहु न सुनी मम पच बिकलाई। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु, सुत बिन नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस विचार जिया आ जागौ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि बर काहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ दैव जी आवे मोही। जय हों अवध कवन मुहलाए, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजसु सहते जग माहि, नारी हानि विशेष छति नाही। अब पुलोक सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंप से सौंपेसी मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहो तिह जाई, उठि किन मोहे भी सिखावहु भाई। राम कितने व्याकुल हैं, वे लगभग निसंग हैं, वे बिल्कुल शोकाभिभूत हैं। उनके वाक्य में कोई संगति और क्रम नहीं है। पिता वचन मन तेउ नहि सोहु, एक और सहोदर भ्राता, दूसरी और निज जननी के एक कुमारा। विवशता की यह दशा कि जय हो अवध कवन मुहलाई, तुलसी के ही वे शब्दों में वे प्रलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, ऐसा विलाप ऐसा स्वाभाविक व्यवहार ब्रह्म नहीं कर सकता। इसलिए तुलसी ऐसे अवसरों पर अपने पाठक श्रोता को जरूर आगाह कर देते हैं कि यह तो लीला है, लेकिन राम का यही रूप तुलसी के काव्योत्कर्ष का आधार है और लोक को प्रिय है। सुंदर भाइयों को देखकर लोगों को राम लक्ष्मण की जोड़ी याद आती है। भाइयों या मित्रों के निष्कपट स्नेह मिलन को लोग भरत मिलाप कहते हैं। पतिव्रता स्त्री को सीता कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान यह सब देखकर भी नहीं समझते, मानते कि इस देश के लोग अपने जीवन में राम के ब्रह्म रूप से कहीं अधिक उनके मानवीय रूप को स्वीकार करते हैं। उत्तर भारत की जनता ने राम के मानवीय रूप को जो इतना स्वीकार कर रखा है, उसके पीछे तुलसी के काव्य का हाथ उससे ज्यादा है। पहले यह कहा जा चुका है कि तुलसी के राम में वाल्मीकि के राम का प्रताप और पराक्रम नहीं है। ब्रह्म कह देने के बाद फिर प्रताप और पराक्रम को अलग से रेखांकित और चित्रित करने की आवश्यकता तुलसी ने न समझी होगी। केवल एकाध स्थलों पर तुलसी के राम वाल्मीकि के राम के याद की याद दिलाते हैं। वे जटायु से कहते हैं, सीता हरन तात जनी कहे हु पिता सन जाय, जो मैं रामू त कुल सहित कही दसानन आय। या परशुराम के प्रति यह उक्ति, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंकुते ही पावर आना। जौरन हम ही प्रचारे को, लरही सुखेन कालो किन हो। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने राम को शील शक्ति और सौंदर्य का समन्वित रूप कहा है। तुलसी के राम में शील एवं सौंदर्य का पूर्ण चित्रण है। शक्ति तो उसमें है ही, वे सर्वशक्तिमान है, यद्यपि इस शक्ति का चित्रण बहुत कम है। तुलसी के राम में मर्यादा शील और विशेषतः संकोच बहुत अधिक है। राम ही नहीं, मानस के सभी सत्पात्र परम संकोची हैं। वे कुछ भी करने के पूर्व यह भली भांति देख सुन लेते हैं कि इसमें किसी प्रकार का अनौचित्य तो नहीं है। परम औचित्य के प्रतीक राम है, तुलसी की भक्ति और तुलसी के राम भी अपने युग के औचित्य के प्रतिमान में ढल जाते हैं, क्षमा कीजिएगा, ढले हैं। तुलसी का काव्य शिल्प तो औचित्य का सर्वोच्च उदाहरण है। तुलसी ने विनय पत्रिका के पद में राम के संकोचशील का वर्णन इस प्रकार किया है, सुनी सीतापति सील सुभाव, मोदन मन तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाओ। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाओ, कहत राम विधु बदन रिसो है सपने हूँ लख्यो नकाओ। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाओ, जीत हारि चुचकारि दुलारत देत दिवावत दाओ। शिला साप संताप विगत भय पर सत पावन पाओ, दई सुगति सो नर हेरी हर्ष हिय चरण छुए को पछताओ। भव धनु भंज निदरि भूपति भृगुनाथ खाई गए ताओ, क्षमी अपराध क्षमाय पाय परे ईतौ न अनत समाऊ। कहयो राज बन दियो नरबासी गरी गलानि गयो राव। ताकुमात को मन जोगवत ज्यो निज तन मरम को घाव। कपि सेवा बस भय कनौड़े कहयो पवन सुत आऊ। देबे को न कछु रिन्याह धनिक तू पत्र लिखाऊ। अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन तिन तज्यो छल छाओ। भरत सभासन मानि सराहत होतन हृदय अघाओ। निज करुणा कर तूति भगत पर चपल चलत चरचाओ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिर गाओ। समुझी समुझी गुन ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। तुलसी दास अनायास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। सीतापति राम के शील स्वभाव का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि बचपन से ही उनके माँ बाप बंधु गुरु सेवक सचिव और सखाओं ने स्वप्न में भी राम को क्रोश युक्त नहीं देखा। अपने छोटे भाइयों और नगर के अन्य बालकों के साथ खेलते हुए वे अपना जीता हुआ दांव उन्हें देकर खुद हार जाते थे, उन्हें जिता देते थे और यह सब करते थे उन्हें चुचकारते और दुलारते हुए। राम के शील संकोच की विशेषता यह है कि वे जिस पर कृपा करते हैं उससे भी अपने को विनम्र बनाए रखते हैं, मानो कृपा उन्होंने प्राप्त की हो। अहल्या को उन्होंने शाप से मुक्त किया किंतु उन्हें उसे मुक्त करने की बात नहीं याद आती, उल्टे वे इस बात को लेकर परेशान हुए कि उन्होंने अहल्या को चरणों से छुआ। परशुराम ने क्रोध किया, राम ने उन पर क्रोध तो किया ही नहीं, उल्टे लक्ष्मण से माफी मंगवाए, खुद उनके पैरों पर गिर पड़े। भला कहीं इतना संकोच भी समा सकता है? राजा दशरथ ने राज्य देने को कहा, कैकेयी के कहने पर वनवास दिया। इस कृत्य के कारण राजा दशरथ को बहुत ग्लानि हुई, लेकिन राम कैकेयी का मन हमेशा रखते रहे, जैसे कोई अपने शरीर के घाव की देखभाल करता है, घाव काट देता है फिर भी ठीक होने तक उसकी देखभाल करनी होती है। राम सेवक हनुमान के वशीभूत हो गए। हनुमान राम के भक्त थे, फिर भी राम ही अपने को उनका कर्जदार मानने लगे, उनके कनौड़े हो गए और उनसे कहने लगे, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ लेकिन तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम ऋण देने वाले धनिक की भांति मुझसे ऋण पत्र लिखवा लो। वे स्वयं तो भरी सभा में भरत का सम्मान और उनकी सराहना करते हुए नहीं थकते, लेकिन कहीं उनकी करुणा और उनके कार्यों की चर्चा कोई करे तो उसे दबा देते हैं, दूसरा प्रसंग छेड़ देते हैं। यह तुलसी के राम का शील स्वभाव है। राम के इस शील संकोच की बराबरी रामचरितमानस का यदि कोई दूसरा पात्र कर सकता है तो वे भरत हैं। इस शील संकोच के प्रकाश में ही राम की दीन बंधुता समझ में आती है। वे दीनों के सहायक मात्र नहीं हैं, वे उनके सखा हैं, उनके बंधु, गुरु, माता पिता हैं। उनका और विपत्ति ग्रस्तों का हार्दिक संबंध भावनाओं पर आधारित है, कर्तव्य भावना पर नहीं। दीन ही राम के भक्त हैं। तुलसीदास ने राम को अनेकानेक स्थलों पर दीन बंधु, गरीब नेवाज कहा है। वे विपत्ति भंजक हैं। इसी विपत्ति और दीनता को राम दूर करते हैं राम राज्य की स्थापना करके। राम राम राज्य राम से भिन्न नहीं है। जहां राम होंगे वहीं राम राज्य होगा। लेकिन यह याद रखना होगा कि राम तुलसी के सबसे बड़े जीवन मूल्य हैं। राम के माध्यम से तुलसी नैतिकता और आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रामोन्मुखता तुलसी को काम्य है। राम विरोध उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा कार्य है। तुलसीदास के साहित्य में रामोन्मुखता और राम विरोध का यह द्वंद कई रूपों में प्रकट हुआ है। उनमें सबसे अधिक विचारणीय है राम राज्य और कलयुग का द्वंद। राम राज्य तुलसी का वह स्वप्न है जिसे वे अपनी समकालीन दुर्व्यवस्था अर्थात कलयुग को तोड़कर स्थापित होते देखना चाहते थे। इस दुर्व्यवस्था के नाश और दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित व्यवस्था यानी राम राज्य की स्थापना के माध्यम हैं तुलसी के राम। शीर्षक तुलसी का देश। यद्यपि तुलसी के राम त्रिभुवन और चराचर के स्वामी हैं, किंतु तुलसी ने जिस देश का चित्रण किया है वह भारत विशेषतः हिंदी प्रदेश है। इस देश से तुलसी को अपार प्रेम था। यहाँ के मनुष्य, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की धरती, फसल, भाषाएं, वन, उपवन, खग, मृग उनके बहुत आत्मीय और प्रिय थे। तुलसी की रचनाओं में देश अपने विविध रूपों में मौजूद है। तुलसी साहित्य का प्रेमी पाठक उनकी रचनाओं के माध्यम से अपने को और अपने देश को ही पढ़ता और देखता है। तुलसी साहित्य में हमारा देश जितनी विविधता और संपूर्णता के साथ चित्रित है उससे अभिभूत और विभोर होना जितना स्वाभाविक है उसे आंक पाना उतना ही दुस्साध्य है। कौन पाठक और आलोचक अपने को इतना भारतमय बना पाएगा? भारत शब्द का प्रयोग संस्कृत में देश विशेष के लिए बहुत कम हुआ है। वहां भारत, भरत के वंशज, भरत से संबंधित, अभिनेता आदि के अर्थ में ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। आपटे के शब्दकोश के अनुसार देश के अर्थ में भारत शब्द शिशुपाल वध में प्रयुक्त हुआ है। देश के अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी से बहुत अधिक बढ़ गया। अब इस शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे देश के ही अर्थ में होता है। तुलसीदास के यहाँ भारत शब्द देश विशेष के अर्थ में मिलता है। वह भारत भूमि भली है, भली भारत भूमि, भले कुल जन्मु समाज शरीरु भलो लहिं कहें। देश प्रेम का अर्थ क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक का एक अध्याय है, भारत माता की जय। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत से प्रेम करने का मतलब होता है भारत की जनता से प्रेम। देश प्रेम के स्वरूप का विवेचन अपनी चुभती हुई शैली में एक स्थान पर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वह हमारे देश प्रेम को हृदयंगम करने के लिए महत्वपूर्ण है। देश प्रेम क्या है? उद्धरण चिन्ह स्टार्ट है। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्य गत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। परदेश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों पर रीझ कर या कम से कम न खींच कर बिना मन मैला किए कमरे का फर्श भी मैला होने देंगे? मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। उद्धरण चिन्ह बंद, उद्धरण चिन्ह स्टार्ट। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं उनसे परच जाते हैं। यह परचना परिचय ही है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी हो तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाइए। बाहर निकलिए तो आंख खोलकर देखिए कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेसु के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, कछारों में चौपायों के झुंड इधर उधर चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच गांव झांक रहे हैं, उनमें घुसिए देखिए तो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें कीजिए, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बैठ जाइए और समझिए कि ये सब हमारे देश के हैं। इस प्रकार जब देश का रूप आपकी आंखों में समा जाएगा, आप उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाएंगे, तब आपके अंतःकरण में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फला फूला रहे, उसके धन्य धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। पृष्ठ 121-22-23 रस मीमांसा। तुलसीदास उत्तरी भारत विशेषतः हिंदी प्रदेश को, यहाँ की भूमि, नदियों, भाषाओं, लोगों के रीति रिवाजों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यह सब जाना होगा उन्होंने अपने कठिन जीवन संघर्ष के दौरान। वे यहाँ की प्रकृति के सौंदर्य, सर सरित के निर्मल जल, उनमें खिले कमल, कुमुद, खेतों, थानों, खगमृग, हरित भूमि, दूब पर मुग्ध हुए थे तो ऊसर, अकाल, दावाग्नि, काय, जोंक, सर्प, नर्क आदि से भीत भी हुए थे। उन्होंने यहाँ के पुरुष और नारियों के स्वभाव की बहुत गहराई से समझा था। यहाँ के आकाश, धरती, ऋतुओं, मेघों को विविध रूपों में देखा और आंका था। हिंदी का शायद ही कोई दूसरा कवि हो जो उत्तरी भारत की प्रकृति और जनता को इतने व्यापक और गहरे तौर पर जानता हो। तुलसी के राम इसी जनता और प्रकृति के मध्य चित्रित किए गए हैं। राम और भरत, क्षमा कीजिएगा, राम और भारत यानी भारत की प्रकृति और जनता तुलसी के साहित्य में घुल मिल गए हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा तुलसी के राम की इस विशेषता पर बात करते हुए यह दोहा उद्धृत किया करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बनसीय रघुबीर बिहारु। राम कथा मंदाकिनी है, चारु चित्त चित्रकूट है, स्नेह सुंदर वन है जिसमें सीता राम विहार करते हैं। तुलसी को प्रकृति की गोद में विचरण करते राम और सीता का रूप संभवतः सबसे अधिक प्रिय है। वन मार्ग के पथिक सीता राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का चित्रण उन्होंने तन्मय होकर किया है। इस वन मार्ग पर प्रकृति, ग्रामीण पुरुष, स्त्रियां, निषाद सभी हैं। राम कथा मंदाकिनी की तरह एक और दोहा उद्धृत किया जा सकता है। पंचवटी बट बिट पतर सीता लखन समेत, सोहत तुलसी दास प्रभु सकल सुमंगल देत। यहां पंचवटी तुलसी का चित्त तो नहीं है, लेकिन तुलसी के चित्त में पंचवटी का वह वट अवश्य अंकित है जिसके तले लक्ष्मण और सीता के साथ राम समस्त मंगल प्रदान करते हैं। तुलसी को राम का वह रूप बहुत प्रिय है जो प्रकृति से युक्त है। अगर वह श्रम बिंदु से सुशोभित हो तो और भी मनोहारी हो जाएगा। ठाढ़े हैं नवद्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे कर साय कुलय, बिकटी भ्रिकुटी बड़री अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। तुलसी अस मूरति आनुहिए, जड़ डारु धौ प्राण निछावरि कै, श्रमसी कर सांवर देह लसय मनो सरासि महातम तारकमय। राम के श्रम सीकर के साथ सीता की झलकी भरी भाल कनी जल की भी याद कर लीजिए। राम लक्ष्मण की यह शोभा लता पल्लवों के बीच पुष्प वाटिका में सीता को दिखलाई पड़ी थी। वे लता पल्लवों के साथ साथ ही दिखलाई पड़ी होंगी। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निक से जन जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाय। लता भवन से राम लक्ष्मण की जो मूर्तियां प्रकट हुई वे नीले और पीत कमल के वर्ण की थीं। उनके सिर पर मोर पंख विराजमान थे, केशों के बीच बीच कुसुम कली के गुच्छे थे। मोर पंख तो प्रायः कृष्ण के सिर पर रहता था, वे ग्वाले थे, राजकुमारों के सिर पर कैसे आया? मालूम होता है तुलसी को कृष्ण का मोर पंख काफी जचता था, सो उन्होंने अपने प्रिय राम लक्ष्मण के सिर पर सुशोभित कर दिया। संयोग से राम लक्ष्मण के भाल यहां भी श्रम बिंदु से सुशोभित है। शोभा सीम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तुलसीदास के यहां प्रकृति की सुषमा राम की सुषमा के साथ साथ विराजती है। राम के जीवन में वन का बहुत अधिक महत्व है। वन से राम का संपर्क प्राय आजीवन बना रहता है। बचपन में विश्वामित्र के साथ वनवास, फिर विवाह के उपरांत 14 वर्षों का वनवास, राजा होने पर सीता का वनवास, पुत्रों का वन में ही जन्म और पालन। तुलसीदास ने राम के जीवन और राम कथा में वन के इस महत्व को समझा है। तभी उन्होंने लक्षित किया कि वाल्मीकि कवीश्वर और हनुमान कपीश्वर दोनों वन विहारी थे। सीता राम के गुणों के अरण्य में विहार करने वाले हैं। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण, वंदे विशुद्ध विज्ञान कविश्वर कपि कपीश्वरो। वनवासी राम का गुणगान वनवासी वाल्मीकि और हनुमान ही कर सकते थे, और तुलसी भी बहुत दूर नहीं पड़ते। आनंद काननी कश्चि जड मस्तुल सचितुर कवितो जरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। प्लीज रिपीट। आनंद कानने कश्चिज ड गमस्तुल सितरु कवितो जरि यस्य राम भ्रमर भूषिता।